Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. तो आप सबका स्वागत है सूरत भक्त वृंद का. बड़े उत्साह के साथ श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार उनके द्वारा शास्त्रों का जो सार दिया गया है उनको सीखने के लिए उत्साह से भक्ति शास्त्री के माध्यम से भगवद गीता आदि ग्रंथों को समझने का प्रयास कर रहे हैं. पंद्रहवें अध्याय तक हमने पहले सीखने का प्रयास किया था. आज सोलहवां अध्याय शुरू करेंगे और सोलहवें अध्याय का नाम है देवी असुरी संपदा योग. देवी असुरी संपदा योग, संपदा इसका अर्थ ये है कि सृष्टि में दो प्रकार के लोग हैं. कुछ देवी प्रकृति के हैं और कुछ असुरी प्रकृति के हैं. सदा से दो प्रकार के लोग इस संसार में आते रहे हैं, देवी प्रकृति और असुरी प्रकृति के. पंद्रहवें अध्याय में हमने पढ़ा था कुछ शाखाएं ऊर्ध्व मूल अधशाखा अश्वतः प्राहु अव्ययम्. ये भौतिक जगत को एक वृक्ष से तुलना की गई थी. एक ये पूरा जगत कैसा है, एक वृक्ष जैसा है. उसको वृक्ष क्यों कहते हैं? वृक्ष का अर्थ होता है जिसको काटा जा सकता हो. तो इसका बंधन काटा जा सकता है. तो उस वृक्ष के जड़ ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे हैं. फिर आया था कि उसकी और कुछ दूसरी शाखाएं ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं. तो ऊपर शाखाएं जाती हैं वो देवी प्रकृति के लोग होते हैं जो सतोगुण आदि में ऊपर होते हैं, और जो नीचे की शाखाएं होती हैं वो रजोगुण तमोगुण के नीचे की प्रवृत्ति के लोग होते हैं. तो उस वृक्ष में थोड़ा सा इसका संकेत है. नवे अध्याय में एक श्लोक और आपने याद होगा था, मोघाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम योनिम. तो वहां भी आसुरी और राक्षसी योनि का वर्णन है. सातवें अध्याय में भी चतुर्विधा भजते माम से पहले कौन सा श्लोक है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा परबध्यन्ते नराधमा मायाम अपहृत ज्ञान आसुरीम भावम. तो आसुरी वहां भी शब्द आसुरी आया है. तो अब क्योंकि बहुत जगह पे भगवान ने आसुरी शब्द का उल्लेख किया है भगवद गीता में और कई जगह पे देवी संपद का भी उल्लेख किया है, तो फिर अब उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहते हैं कि देवी असुरी संपदा क्या है. तो इसके पहले जो तीन श्लोक हैं इसमें 26 गुण हैं देवी संपदा के. पहले तीन श्लोकों में देवी संपत्ति के 6 गुण हैं. तो आइए पहले ये तीन श्लोक पढ़ते हैं. आप पुस्तक खोल लीजिए. श्री भगवान वाच, बोलिए, अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थित दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्याग शान्तिर् अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् माध्वम् ह्रीहि अचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अदोरोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। अंतिम लाइन का आखिरी शब्द देखिए, अभिजातस्य। अभिजातस्य का अर्थ है जन्म से ये संस्कार लाते हैं। आप शब्द अर्थ में देखिए, अभिजातस्य का अर्थ है वन हु इज बॉर्न ऑफ, मतलब जन्म के साथ आते हैं अभिजातस्य। और भावार्थ में आप ये शब्द, अभी दूसरा जो परिच्छेद है भावार्थ के दूसरे परिच्छेद में देखो, अभिजातस्य शब्द है। शब्द अभिजातस्य का अर्थ है क्या लिखा है, अभिजातस्य रेफर्स टू वन बॉर्न ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज और गॉडली टेंडेंसी इज वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए ये अभिजातस्य शब्द को थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है कि देवी संपत्ति का इस दुनिया में लाने के लिए माता पिता को सावधान होना चाहिए कि हमारे पास देवी संपत्ति का कैसे बालक आए घर में। तो ये पूरा परिच्छेद आप पढ़िए, अभिजातस्य का अर्थ है। शब्द अभिजातस्य क्या लिखा है, एक हिंदी मेरे को दे दीजिए पुस्तक तो मैं देख लूं। दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्वित है। देखा, इसका मतलब जन्म से वो देवी संपदा का होता है। मिला ना दूसरा परिच्छेद, तात्पर्य का दूसरा परिच्छेद, दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त। अब इसके पीछे दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। अब इसको थोड़ा आप देखेंगे तो इसमें यह है कि अगर हम संस्कार शब्द जो 16 संस्कार हमारे हैं उसमें पहला शंखा जन्म से पहले होता है, तो संस्कार अगर संस्कार पवित्र करने की विधि है और यह संस्कृत अगर घरों में संस्कार का वातावरण हो जाए तो देवी संपदा की संतान उत्पन्न होती है। अब कोई संस्कार कहीं दुनिया में हो नहीं रहा है, इसलिए जन्म जायते सर्व सुदर, ये कलयुग में ये सिद्धांत बताया है, जन्म से सारे सुदर हैं। संस्कारात भवति द्वेजा, अगर उसको संस्कारत किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, पवित्री विधि की जाएगी, तो फिर वो द्विज का मतलब दूसरा जन्म उसका होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य द्विज तब होगा। भागवत में कभी आपने एक जगह पे आता है तीसरे स्कंद में, कश्यप और दित्ति संध्या काल का समय है, यज्ञशाला का स्थान है, उस समय सती आदित्य दित्ति कश्यप को पल्लू से पकड़ती है। तब कश्यप कहता है, इस वक्त भगवान शंकर अपने भूत गणों असुरों राक्षसों के साथ घूमते रहते हैं, इस वक्त जो बालक होगा वो असुरी प्रवृत्ति का होगा और उसके परिणाम में हिरणाकश्यप हिरणाकश्यप दो का जन्म हुआ है। तो इसका कहने का प्रभाव यह है यहां कि ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसा संतान चाहते हैं। भगवान का निश्चित रूप से इसमें विधि विधान है, लेकिन फिर भी अगर ये शिक्षा दी जाए कि देवी संपत्ति का संपदा का कैसे बच्चा घर में होना चाहिए, कैसे शिक्षा, तो भगवान कहते हैं वो जन्म से ऐसे होता है, असुर जन्म से ही उसमें ये संस्कार आते। तो अभिजात से शब्द को ठीक तरह से समझना चाहिए। तो ये परिच्छेद विशेष रूप से ऐसे लिखा है। प्रभुपाद का कहने का भाव अंत में ये कि अगर लोग कृष्ण भावना भावित होंगे तो उनकी मानसिकता हर वक्त कृष्ण भावना में रहेगी, तो उनका संतान जो होगा वो अपने आप कुछ प्रयास करने के बगैर ही देवी संपदा का हो जाएगा। तो अभिजात से शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा 26 गुण हैं देवी संपदा वालों में, 26 गुण, ये 26 से पूरे गिनने से 26 हो जाएंगे। एक और भी हमारे पास विषय लिखा मिलता है 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटीज, वो यहां से नहीं ली गई है, वो चेतना चरितमृत से ली गई है। एक सामान्य है लेकिन एक जैसी है, फिर भी ये 26 गुण, इनमें से पहले 3 गुण देख लीजिए। अच्छा, ये गुण भी वर्ण और आश्रम के अंतर्गत है। कौन से वर्ण में कौन से गुण होना चाहते तो कहेंगे देवी गुण है, कौन से आश्रम में कौन से गुण होना चाहिए, तो पहले 3 गुण देख लीजिए क्या है। अभयम, इसका अर्थ तो सबको आता ना है, आता है ना, निडरता, भय से मुक्त, सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, सत्व संशुद्धि। क्या शब्दार्थ में क्या लिखा है सत्व शुद्धि की, अपने अस्तित्व की शुद्धि। मालूम है जब हम जप करने बैठते हैं उससे पहले भूत शुद्धि, शुद्धि एक शब्द कहा जाता है, भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का मतलब है अपने अस्तित्व की शुद्धि करना। तब ये मंत्र बोलने का पुराने जमाने से नियम था, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, मैं सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ग्रस्त नहीं, कौन हूँ मैं, गोपी भरतऊ दास, पद कमल ही और दास दास, मैं भगवान के दासों के दासों का दास बन के अभी ये नाम भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो इसको भूत शुद्धि बोलते थे, मतलब शरीर को शुद्ध करके सभी सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, सब जो हमारी डिजिग्नेशन है, सो हमारी पहचान शरीर की है, उससे मुक्त होकर अपने स्वरूप में, हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरा स्वरूप है, तो दास के स्वरूप में बैठना, दास 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 अनुदास के सर्प, ये हमारा स्वरूप है, सेवा हमारा स्वरूप है, तो उसमें बैठना, इसको संसिद्धि कहते हैं, कि अपने अस्तित्व की संसिद्धि। और तीसरा क्या है, ज्ञान योग व्यवस्थित, अपने आप को ठीक तरह ज्ञान के द्वारा भगवान के साथ जोड़ने में व्यवस्थित करना। ये तीनों गुण सन्यासी के लिए हैं विशेष रूप से। सन्यासी को किसी का भय नहीं है, कहीं भी जाएगा भगवान मेरे साथ है, वो अपने आप को अकेला नहीं समझता है। प्रभुपाद जी ने कई बार कहा, मैंने कभी अपने आप को अपने गुरु से अलग नहीं समझा, हमेशा मेरे साथ है। सन्यासी कहीं भी जाएगा उसको भय नहीं रहता है। हम सब गृहस्थी को तो भय है, कल क्या खाएंगे, धंधा ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, तो हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सन्यासी में ये 3 गुण होते हैं। पहले 3 गुण किसमें है, अब ये दूसरा तीसरा परिच्छेद में देखिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था में सन्यासी, तीसरे परिच्छेद में शब्द सन्यासी है। दो बातें यहां ऐसे और कही गई हैं, सॉरी चौथे में, हाँ चौथे में आ जाएगा आगे, वहाँ ये किताब है, नहीं मैं, आप लोग दे दीजिएगा, आप पढ़ के बता दीजिएगा चले। हरे कृष्णा बोलो, ये चाहिए आपको? आई मिल गया, संजना को किताब मिल गया। चलो जी धन्यवाद। तो वर्ण आश्रम धर्म, तो कोई कहे वर्ण आश्रम धर्म कहां से आया? भगवत गीता में वर्ण आश्रम का पहले उल्लेख दूसरे अध्याय में है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम अपने स्वधर्म को पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म धर्म का युद्ध करना है। फिर तीसरे अध्याय में आया है स्वधर्म में काम करना, भले गलती हो तो भी कोई बात नहीं है। ये 35वां, तीसरे का 35वां श्लोक, फिर वर्ण आश्रम का तीन का 35 और दूसरे में 29 या 31 होगा, देखिए स्वधर्म 31 है ना, स्वधर्म 31, 2 का 31, 3 का 35 स्वधर्म यहां दिखता है। फिर 4 का 13, 4 के 13 में क्या है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, वहां बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं चारों वर्ण मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार के ऊपर। गुण का अर्थ क्या है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, और कर्म सतोगुण में ब्राह्मण होता है, रजोगुण में क्षत्रिय होता है, रजो और तमो दोनों गुण के मिश्रित वैश होता है, और पूर्ण रूप से तमोगुण में शूद्र होता है। ये तो गुण हो गए। कर्म 18वें अध्याय में आएगा, 18वें अध्याय में ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के कर्मों का वर्णन मिलेगा कि जो ये काम करता है उसको ये कहा जाता है। फिर 5वें में नहीं, 6वें में नहीं, 7वें में नहीं, 8वें में नहीं स्वधर्म का वर्णन नहीं है, वर्ण आश्रम का धर्म नहीं, वर्णन नहीं है। फिर यहां भावार्थ में यहां आ रहा है फिर वर्ण वर्णाश्रम। तो वर्ण आश्रम किसने बनाया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने बनाया। क्यों बनाया, देखिए इसका तीसरे परिच्छेद में बनाया है, ये विभाग शिक्षा के अंतर्गत है। हम शिक्षा और उनके अंदर क्या गुण है उसके आधार के ऊपर है, जन्म से नहीं है वर्ण, ये बात विशेष रूप से मिलती है हमको। जन्म से क्या लाभ होता है, जन्म से सुविधा मिलती है। चलो कोई ब्राह्मण के घर में बन गया तो उसको ब्राह्मण का वातावरण मिलता है, लेकिन उससे वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, ऐसे जैसे वकील के घर में बेटा पैदा होगा तो वकील नहीं बन सकता है, लेकिन किताब उसको मिलेंगे घर में, लेने की जरूरत नहीं है। उसको काला कोट भी घर में दिखने को मिल जाएगा और घर का माहौल उसको ये बता सकता है कि ये काम है, लेकिन बगैर पढ़ाई करके वो वकील नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, अगर ब्राह्मण की सुविधाएं सब है लेकिन वो ब्राह्मण का अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो ब्राह्मण नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कि उसको शिक्षा की आवश्यकता है, तो यहां शिक्षा काय के लिए है, समाज को शांति का वातावरण बना के रखने के लिए है। वर्ण आश्रम व्यवस्था काय के लिए है, समाज को शांति, सभी लोग ब्राह्मण बनेंगे तो काम कौन करेगा, सभी लोग क्षत्रिय बनेंगे तो रक्षा किसकी करेंगे, आपस में लड़के मरेंगे, सभी लोग वैश्य बन जाएगा तो उनको उनकी रक्षा करेगा कौन। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था उनके स्वभाव के अनुसार है, प्राय हर एक का स्वभाव अपना होता है। तो अब इस वर्ण आश्रम के अंतर्गत प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला एक सिद्धांत बता रहे हैं, सन्यासी सबका गुरु होता है, सन्यासी पूरे विश्व को अपना घर मानता है। असल में गुरु शब्द से ज्यादा है प्रभुपाद का, कहीं भी पढ़ेंगे लिखा हुआ तो दो शब्द कहते हैं, मेरे प्रिय बेटे और बेटियां, माई डियर सन्स एंड डॉटर्स। प्रभुपाद ने डिसाइपल शब्द बहुत कम यूज किया, माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स या बेटा और बेटियां यूज किया है शब्द। इसका अर्थ यह है कि गुरु पिता के स्थान के ऊपर है, जो आपकी सुरक्षा का जैसे पिता हमारे शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखता है ठीक रखने, वो हमारे आत्मा की सुरक्षा तक शरीर के साथ के कैसे संसार से मुक्त कर सके। तो सन्यासी पूरे विश्व को अपना घर मानता है और सारे ही उसके परिवार के हैं, वो परिवार का बड़ा है, तो वो सबके लिए मार्गदर्शक है। ब्राह्मण का भी गुरु सन्यासी, और ब्राह्मण बाकी सारे आश्रमों का पिता के समान गुरु है। ब्राह्मण बाकी आश्रमों का गुरु बन सकता है, लेकिन सब सन्यासी सबका गुरु है। ये बातें दो कहकर फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासी सन्यासी का पहला क्या गुण है? निर्भयता। अब वो खुद निर्भय नहीं होगा तो हमको निर्भयता कहां से देगा? भाई हमको निर्भय बनाना है ना, किस चीज के भय से? मृत्यु के भय से, बंधन से मुक्त करना है तो पहले खुद मुक्त होना चाहिए ना। जिसके हाथ खुले होंगे वो दूसरे का खोलेगा ना, जो निर्भय होगा वो दूसरे को निर्भय बना सकता है। तो जो पहला गुण है अभयम, वो सन्यासी भी को निश्चित रूप से निर्भय होना चाहिए। निर्भय का मतलब किसी के ऊपर आधारित आश्रित नहीं है, भाई मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ मिलेगा तब मैं सुखी हो सकता हूं, नहीं तो दुखी हो जाऊंगा। तो कुछ लुट जाने का भय नहीं है, कुछ न आने का भय नहीं है। हमें तो ये होता है ना, कुछ हमारा चला गया तो भय होगा, कुछ टाइम से नहीं आया तो भय होगा, उसको उसके बाद है ही नहीं कुछ तो जाएगा क्या, कुछ चाहिए ही नहीं तो दुख क्यों है। एक भगवान से उनको अपना संबंध है और उसके नाते सबकी सेवा करते हैं, लेकिन भयभीत नहीं है। तो अभय शब्द पहला जो पहला गुण है, प्रभुपाद ने लिखा है, किसका अर्थ क्या है कि उसको किसी से सहायता का कोई सहायता की जरूरत नहीं है। यह दूसरा है कि इसलिए सन्यासी पहले घर बनाता नहीं था। अब घर बनाना नहीं, आश्रम बनाना ही, तो इकट्ठा करके रखेगा कहां? पेटी भी नहीं रखनी है, झोला भी नहीं रखना है। पुराने जमाने लोटा और लंगोटा, साधु का डंडा, लोटा और लंगोटा, बस। अब लोटे में जितना चाहिए उतना पानी ले ले, उतना चाहिए दूध ले ले, चाहे रोटी ले ले, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ रखना ही नहीं है। तो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। ये प्रभुपाद तीन शब्द लिखते हैं, उसको कोई गारंटी, सपोर्ट की गारंटी नहीं है कहीं से, कोई मुझे मिलेगा इसका कोई, भाई आप सबको तो गारंटी है ना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देगा। बेटे को कहा, ब्रह्मचारी को मालूम है कि मेरा गुरुजी मेरा पालन पोषण करेंगे, हाँ, गृहस्थी को मालूम है कि मेरे धंधे से मुझे कमाना है, नौकरी करता है, तनख्वाह मिलेगी, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, भगवान की कृपा के ऊपर केवल आश्रित है। अगर किसी के मन में यह आया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरा देखभाल कौन करेगा, ऐसे आदमी को सन्यास लेने का अधिकार ही नहीं। तो यह सन्यासी का पहला गुण है। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है और परमात्मा हमारे हर वक्त सहायता करता रहता है। और जो इतना रिस्क उठाते हैं वो भगवान के हाथ को देख सकते हैं कि कैसे भगवान सहायता करता है। आप उदाहरण के रूप में देखें, सन्यासी के रूप में इतना बड़ा जोखिम उठाना, प्रभुपाद को पानी के जहाज में 70 साल में जाना, वो भी कार्गो शिप में जाना, 2 बार हार्ट अटैक भी होना, फिर कुछ पैसा नहीं साथ होना 40 रुपये से ज़्यादा, और दूसरे देश में जाना जहाँ कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कल्चर बिल्कुल दूसरा, जो लोग कैसे उनको मिले हैप्पी, उनके ऊपर किसी के ऊपर आश्रित न होकर कितना विश्वास भगवान के ऊपर रहा होगा। कैसे उन्होंने प्रार्थना लिखी है, जो जाते हुए जलदूत में जो प्रार्थना लिखी है, और फिर उतरने के बाद बोस्टन में पहले चारों ओर देख के फिर वापस आके अंदर बैठे और न्यूयॉर्क पे उतरे, तो उस वक्त जो प्रार्थना लिखी है कि मुझे मालूम नहीं आप मुझे कृष्ण क्यों लाए हो, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कृष्ण उनके सामने खड़ा है और बात कर रहे हैं। तो ये विश्वास उनका दृढ़ है। दो बार हार्ट अटैक होने के बाद प्रभुपाद जी जलदूतों के ऊपर देखते हैं स्वप्न में कि भगवान श्री कृष्ण कहते तुम चिंता मत करो, और उसके बाद पैसिफिक पूरा जो सागर था वो बहुत शांत था, और कैप्टन पांडे बोलता है इतना कभी शांत हमने देखा नहीं है नेविगेशन में। और अभी मालती माता जी कह रही थी हम एक बार जलदूता को देखने के लिए गए, हमने बोला बड़ा कोई शिप होगा, शिपयार्ड में गए तो बड़े बड़े शिप थे उसके अंदर देखा, जलदूता तो इतना छोटा था, कोई बड़ी नाव से ज़्यादा बड़ा नहीं था, अभी तो बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं लेकिन वो बहुत छोटा था, और ऐसा जहाज़ पानी के ऊपर कैसे हिला होगा, जो कोई कभी पानी में किसी ने सफ़र किया होगा तो मालूम होगा। तो ऐसा विश्वास लेके निकलना कहीं भी, और प्रभुपाद ने फिर नौजवानों को संन्यास दिया और वो ऐसे ऐसे जगहों पे चले गए, तब साउथ अफ्रीका में जाना मना था लेकिन कैसे छुप के चले गए, वहाँ प्रचार किया, फिर एकदम वहाँ सत्संग शुरू हो गया। तो ये लोग रशिया चले गए, ऐसी जगहों पे चले गए रिस्क उठा के, कि भगवान का ऊपर पूर्ण विश्वास उनको था कि हम अकेले नहीं हैं, गुरु और कृष्ण हमारे। तो ये सन्यासी के, हम लोग कितना भी प्रयास करें हमारे को फिर भी पीछे से भाई वो क्रेडिट कार्ड साथ रखने की जरूरत पड़ेगी। तो सन्यासी का क्रेडिट कार्ड, हम कभी कहते हैं हमारे भक्तों का क्रेडिट कार्ड हमारा यही है, कहाँ गया हमारा माला लाया ही नहीं, हम क्रेडिट कार्ड हम पीछे रख के आ गए, हमारा यही क्रेडिट कार्ड है, जहाँ भी जाते हैं सब काम अपने आप हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुछ ज्यादा सामान भी नहीं उठाते, संग्रह भी नहीं होता है। प्रभुपाद जब यहां से गए थे मेरे ख्याल रात को एक धोती धोके सुखाते थे, वही सुबह पहनते थे, या दो दो भी साथ नहीं रखे थे, भाई इतना सामान कहां ले जाएगा। सिंपल, जितना सन्यासी सिंपल है, इसलिए कोई भय नहीं है, न चोरी का भय है। और दो गुरु शिष्य साथ जा रहे थे तो शिष्य के पास कोई चीज ऐसी थी रात को, कह महाराज आज जंगल में नहीं रहेंगे शहर जाएंगे। भाई जंगल में क्यों नहीं रहेंगे, शहर क्यों जाएंगे, बोला महाराज नहीं आज शहर में रहेंगे। रात को सोए, उसकी पोटली में देखा कि कुछ पैसे पड़े थे, महाराज ने उठा के डाल दिए पानी में। अब दूसरे दिन उसके पत्थर वत्थर कुछ बांध दिए, दूसरे दिन के बोला महाराज आज भी शहर में रहेंगे, बोला क्यों शहर में रहोगे जंगल में रहते हैं, बोला नहीं महाराज यहाँ भय लगता है, बोला जिस चीज़ के लिए भय लगता है वो देखो तुम नहीं है, खोल के देखा पत्थर है, बोला अभी ये महाराज यहीं सोते हैं। वो भय इसका था कि या कोई लूट न जाए, अभी है ही नहीं तो लूटेगा क्या। तो ऐसे भय इसलिए लगता है कुछ है, तो नहीं है तो क्या है। तो यहाँ ये पहला गुण सन्यासी का लिखा है। दूसरा गुण भी सन्यासी का है, क्या है, संशुद्धि, सत्व संशुद्धि। और इसमें भी विशेष रूप से सन्यासी का बहुत से नियम पालन करने हैं उसको, उन नियमों में एक नियम है अपने सन्यास आश्रम को सुरक्षित रखने के लिए बहुत निकट का संबंध स्त्री से नहीं रखना है, इसके ऊपर पूरा भावार्थ है। और इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद अपने आप को बाध्य कर रखा था, अपने शिष्य भी कोई होते थे दूर से प्रणाम करते थे, ये नियम था। और छोटा हरिदास उनका एक शिष्य था जिसने कभी केवल स्त्री की तरफ काम भाव से देख लिया तो महाप्रभु ने उसको अस्वीकृत किया। तो यहाँ प्रभुपाद ने पूरे इस परिच्छेद में अपने संस्था के विशेष रूप से सन्यासियों के लिए आखिर में लिखा है, सन्यासी को अगर भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने का, धन का और स्त्री का थोड़ा भी लोभ रह गया तो वो कभी भी सन्यास आश्रम में अपने स्तित्व को शुद्ध नहीं रख सकेगा। तो माल कृष्ण महाराज को सन्यास दे रहे थे जब प्रभुपाद जी जयपुर में गोविंद देव मंदिर में, मुझे याद आता है ऐसे, तो तो कहा देखो किसी के घर में प्रचार करने जाओ और बड़ा सजा धजा घर देखो तो ये मत समझना कि ऐसा मेरा होता या ऐसा मैं छोड़ के आया हूँ। कहीं प्रचार करने जाओ, स्त्री प्रचार करने आए तो ऐसे मत समझा मैं मेरे घर था, परिवार थी, स्त्री में छोड़ के आऊ। अगर ये दो चीजें तुम भूल सकती हो तो फिर संन्यास लो। संन्यास लेना है तो सब कुछ, पूरा संसार आपका है लेकिन उसमें आपका कुछ भी नहीं है। पूरा संसार आपका है लेकिन आपका कुछ भी नहीं। तो ये प्रभुपाल ने अंत में दो बातें लिखी हैं कि ये दो चीजें, और ऐसे देखा गया है वैसे मुख्य बात तो है भगवान का नाम लेना। जब इन दो तरफ उनका थोड़ा रुझान होता है अथवा भगवान का नाम कम लेगा तो इन तरफ वो अपने आप नीचे खिसक जाएगा। तो सत्य शुद्धि हमारी असल में है भगवत नाम से। नाम सुमन रहेगा तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कल परसों वहाँ कर रहे थे वैष्णव सदाचार का शिक्षा, तो उसमें अगर हम आप ठीक तरह से अपना नाम जप करेंगे सुमरण अपना टाइम से बड़े ध्यान से, तो कोई आदमी हमको नुकसान पहुंचाने, कोई आदमी हमारे को तकलीफ देने आने वाला भी होगा तो भगवान की शक्ति उसको हम हमारे पास आने से पहले रोक देगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, चोर किसी के घर में जाने का प्रयास करते हैं, वो महाप्रभु को उठा के चोर ले जा रहे थे, रास्ते में अंधे हो गए, वापस अपने घर में छोड़ के गए ना। तो ऐसे कई साधु महात्माओं के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो वहां आते हैं तो देखना बंद हो जाता है अथवा कुछ उठा नहीं सकते हैं या मन बदल जाता है। तो एक तो भगवान की शक्ति उसको वहां रक्षा करेगी, भगवान की दैवी शक्ति उसकी वहां रक्षा, और स्वयं के मन में कुछ भाव गलत आ गया तो जाते जाते रास्ते में भगवान स्वयं उसके प्लान को चौपट कर देंगे। भगवान ही उसके उस विचार को, कई बार ऐसे हमने अपने जीवन में देखते हैं कि इच्छा होती है यहां जाए लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था बनाता है कि वो हो ही नहीं पाता, तो भगवान ऐसे रक्षा कर लेते हैं। अगर हमारा जप ठीक है, मुख्य बात यह है कि हमारा पहला मुख्य काम जप ठीक है, वही हमारी फाउंडेशन है। मिनिमम कम से कम 16 माला मिनिमम, इसे ज्यादा कर सकते हैं तो फिर बाकी चीजें अपने आप बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। तो ये सन्यासी को बहुत जरूरी है। और तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थिता, ये भी सन्यासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सन्यासी दरवाजे के ऊपर भिक्षा लेने नहीं जाता है लेकिन उनको ज्ञान देने जाता है। वहां जाता है, लोग बिठाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, फिर उनको भिक्षा दे देते हैं। तो हर एक आदमी को जाके सन्यासी को शिक्षा देनी है, इसलिए उसको शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है और सन्यास लेता है तो संसार में हंसी उड़ेगी। शास्त्र इसलिए प्रभुपाद ने कम से कम कहा कि भक्ति शास्त्री करना चाहिए सब भक्तों को, इससे आगे भक्ति वैभव। और फिर कहा मैं चाहता हूं कि भक्ति वेदांत आप सब बने, मैं भक्ति वेदांत हूं तो आप सब भक्ति वेदांत बनिए। चैतन्य चरितमृत पढ़िए, भक्ति वैभव कीजिए, भक्ति। तो इस तरीके से प्रभुपाद की इच्छा था कि संन्यास लें। अभी इस कान में कम से कम एक नियम है कि भक्ति शास्त्री के बगैर कोई संन्यास नहीं ले सकता है। भक्ति अभी कुछ पुराने बेचारे बहुत पुराने सन्यासी हैं लेकिन भक्ति शास्त्री नहीं कर पाए, एक दो ऐसे स्थितियां आ गई थी। एक उम्र होती है पढ़ने की, एक उम्र होती है, पढ़ना तब आसान होता है, बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी श्लोक याद करना 40 साल के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो वो ये पहले करना ज्ञान का, ज्ञान योग व्यवस्थिता व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब ये है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं वाली भी आनी चाहिए, वो भी सिखानी है, और क्या करना है वो भी सिखाना है, व्यवस्थित हर चीज़। तो ये भी सन्यासी का काम है। अब तीन दूसरे आइटम है इसके बाद वाले 26 में, ये तीन ग्रस्तों के लिए है। आप देख लिए तीन दूसरे कौन से हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च। दान ग्रस्त, सिर्फ ग्रस्त ही देगा और कोई दान कौन देगा। ग्रस्ती और वैश्य, ये दो वर्ण वाले दान देने का उनको, वैश्य और क्षत्रिय भी दान देता है लेकिन प्रायः ये कहा जाएगा गृहस्थी को दान देना है। दान देने का सारा कार्य गृहस्थी का है। और दूसरा है दमश्च, इंद्रियों का संयम, संयम में रहना। संयम में नहीं रहेगा तो गृहस्थी क्या हो जाएगा, गृह मेदी। एक गृहस्थी शब्द है, एक गृह मेदी शब्द है। ग्रस्त का मतलब संयम में रहना और गृह मेदी का मतलब जो चाहे वो करना। तो ये तीसरा है यज्ञ, यज्ञ आदि करना कराना, ये तीन काम ग्रस्तों के है। प्रभुपाद जी कहते हैं ग्रस्तों को लिखा, बहुत शब्द अच्छा लिखा है, ऑनरेबल मीन्स, ऑनरेबल्स मतलब बहुत सभ्य प्रकार से धन का अर्जन करना चाहिए। और खर्चा निकाल के अपना जितना भी है प्रॉफिट का 50% लिखा है। ऐसे संस्थाएं जो आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों का कल्याण करना चाहती हैं उनका सहयोग करना चाहिए। पुराने जमाने में जितनी गुरुकुलें चलती थी ना, गुरु के पास जो बच्चे पढ़ते थे, ब्रह्मचारी रहते थे 25 साल तक, उन बच्चों से कोई गुरु पैसा नहीं लेता था। उनके भोजन, उनका पढ़ने की पोथी पाठ पुस्तक, सब रहने की व्यवस्था गुरु करता था और गृहस्थ सारे उसको, राजा या गृहस्थ धनी लोग उसको चलाते थे। अभी भी एक दो वृंदावन में नाम के गुरुकुल ऐसे हैं जो धनी सेठों के द्वारा ब्राह्मणों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, रहना खाना पीना सब पोथी मिलती है। इसका अब देखो, मंदिर के लिए बहुत से लोग पैसा दे देते हैं, मंदिर बनाने के लिए देते हैं, गरीबों को खाने के लिए दे देते हैं, अस्पताल में दे देते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए कोई नहीं देता है। और वो भी ब्रह्मचारी की शिक्षा के लिए कोई नहीं देता है। ब्रह्मचारी की शिक्षा नहीं होगी तो अच्छा आदमी आपको मिलेगा नहीं भविष्य में। सबसे बड़ी ग्रस्तों को दान देना चाहिए। ग्रस्तों की सबसे बड़ी चिंता क्या है, ग्रस्तों की सबसे बड़ी चिंता क्या है, बच्चे अच्छे बने। और बच्चों में भी बच्ची अगर है तो उसको अच्छा वर मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चिंता ये है कि नहीं। अब कोई सुधरा हुआ लड़का है ही नहीं शिक्षा वाला, तो हमारी चिंता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। इसके लिए अगर हम शिक्षा की पद्धति ठीक तरह नहीं रखेंगे, जहां शिक्षा दी रहा है, जहां चरित्रवान बच्चे बनाए जा रहे हैं, वहां अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा ही नहीं। तो एजुकेशन के ऊपर कोई नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट। हमने देखा सबसे ज्यादा हमारी गुरुकुल परेशान होती है कहीं से, तो वो फी ले रहे हैं लेकिन फिर भी दान लेते तो कोई देता नहीं, जबकि कुलपति पुराने जमाने में कहते 10,000 शिष्य जिसके पास होते थे, 10,000 शिष्यों का पालन पोषण करता था, उसको कुलपति कहा करते थे। ऐसे ये भारत के अंदर ये सिस्टम था। 50 साल पहले तक ऐसी बहुत सी संस्थाएं थी जो गुरुकुल में गुरु शिष्यों पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, और पढ़ाई पूरी पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा में जो आपकी यथा योग्य है वो दो, चाहे 1 किलो चावल दे दो तो भी स्वीकृत है, चाहे 1 किलो सोना दे दो तो भी आपकी इच्छा है। ये उनका नियम था कि जो जिस यथा योग्य देता है, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं था क्या देगा। और वो भी शिक्षा पूरी करने के बाद, पहले नहीं एडवांस फी दो फिर एडमिशन, ऐसे नहीं था। आजकल इस शिक्षा में चरित्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। मिलती है चरित्र के नाम की चीज कोई शिक्षा में, दिखती है? इसलिए प्रभुपाद ने एक बार कह दिया भागवत में कि आजकल के स्कूल और कॉलेज बच्चों का कोष घर है, स्लॉटर हाउस, उनके चरित्र का निर्माण होने के लिए वह संभावना नहीं। स्कूलें चलाते कौन है आजकल, बिजनेसमैन, काय के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसका उद्देश्य ये थोड़ी है कि बच्चे का चरित्र अच्छा हो। और पहले कौन चलाते थे? ब्राह्मण विद्वान गुरुकुल वो चलाते थे। उनका उद्देश्य होता चरित्रवान बच्चे निकले, वो अपने बेटे के समान उनको समझते थे। क्या आज के एजुकेशन वाले अपने बेटे के समान समझते हैं क्या स्टूडेंट को? हाँ, अपने बाप को भी उसका बेटा वापस नहीं देते, कार्ड नहीं दिखा देते हो। खुद बाप तो नहीं बने, दूसरे को भी नहीं बनने देते कोई भी कार्ड दिखाए और बच्चा ले जाए, ऐसे ना, ऐसा हो गया ना। तो ये सिस्टम, दान कहां देना चाहिए ग्रस्तों को, ये बहुत बड़े सोच विचार की। बहुत से लोग अस्पतालों में दान देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले जो आपकी समस्या है उसका समाधान तो ढूंढो। भविष्य में समाज हमारा, हमें अच्छे लड़के कहां मिलेंगे, चरित्रवान लड़के कहां मिले, ऐसी शिक्षा देने का कोई प्रबंध करना चाहिए ना। तो ये समस्या है हमारी, कौन ये काम करेगा इसके ऊपर बहुत बड़ी चिंतन की जरूरत है। संस्था जैसे आप यहां मानो एक 500 कांग्रीगेशन अगर आपकी यहां है, तो आपकी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए हमको अपनी स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, बेटे नहीं तो पोते कहां जाएंगे। पहली आपकी सबसे ज्यादा कहीं आपको दान देना है तो अपनी स्कूल बनाओ, और उस स्कूल के अंदर सदाचार के लिए विशेष 2 घंटे रखो, और आप जाके पढ़ाओ उसमें, किसी और को बुलाओ जो उनको अभी भी कुछ कम से कम पूर्ण रूप से गुरुकुल नहीं तो चरित्र का कुछ हिस्सा तो रख सकते हैं ना। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आपके पैसे का कहीं आपको दान देना है तो आप अपना कोई एजुकेशन की व्यवस्था करो। जब तक ये नहीं हो पाती है तब तक संडे का स्कूल चालू करो, बच्चों को संडे का कम से कम 3 साल से चार पाँच साल से लेके 11-12 साल के बच्चों का संडे का स्कूल चालू करो। 2-4 जगहों में माताजी जो करा सकती हैं वो करें, ड्रामा श्लोक पढ़ना ये सिखाओ, कम से कम कुछ अपनी तरफ से कहीं शुरू करो, और फिर कहीं नर्सरी से शुरू करो थोड़ा बहुत, कोई कहीं घर लेके किराए पे 10 आदमी इकट्ठे होके कोई ले लेते हैं, 2-4 मास्टर रखेंगे खुद जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दान देने की जगह है, जो अपना पहले कहां से बच्चों का संस्कार हो। ये हमारा, ये प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट को दान देना चाहिए जो ऐसे काम में लगे हुए हों। फिर दान 3 प्रकार का है, ये आगे आएगा 17वें अध्याय में, तो उसका ऐसे प्रभुपाद ने उल्लेख लिख दिया, सत्वगुण का दान क्या है, तमोगुण का क्या है, रजोगुण का क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा के, कृष्ण भावना के प्रति दिया हुआ दान शिक्षा के में जो जाए वो सत्वगुण का दान है, वो समाज को व्यवस्थित करेगा। तो एक समस्या ये बहुत से बिजनेस में, अच्छे से अच्छा बिजनेस है इस वक्त एजुकेशन, और बड़े से बड़ी माफिया इस वक्त एजुकेशन है, कि एजुकेशन बहुत बड़ी माफिया हो गई, बड़ा पैसा बहुत पड़ा, लोग हर 3 साल के बाद नया स्कूल बनता है, इतना पैसा लेते हैं कि स्कूल के बाद स्कूल बन रहे हैं। लोगों को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, देना तो तैयार है, लेकिन फिर भी बच्चों को करेक्टर नहीं सिखाया जाता है, कोई उनके अंदर चरित्र का कहीं कुछ लेश मात्र दिखाई नहीं देता है। तो एक आप मानो एक रोल मॉडल यहाँ बना सकते हैं, ऐसा कार्य तो अच्छा है आपके। वो माता जी एक प्रयास कर रही है ना सूरत में, बेचारे दो कपल आत्माराम और क्या नाम, अब अमेरिका में रहते हुए वहां छोड़ के इसको बोलते हैं वानप्रस्थ कपल वानप्रस्थ बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ब्रह्मचारी नहीं पढ़ा सकता है, सन्यासी भी नहीं पढ़ाएगा, वो पढ़ा नहीं सकते, क्यों? सन्यासी को तो घूम प्रचार करने जाना पड़ेगा, बैठेगा नहीं एक जगह और ब्रह्मचारी कच्चा है, बच्चों के साथ डील नहीं कर पाएगा, वानप्रस्थ चाहिए। अभी वृद्ध माता कल क्लास में हमारा निर्णय ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट करनी हो तो किसी वानप्रस्थ के ऊपर करो, एक वानप्रस्थ कपल अच्छा आपको मिल जाए तो आपके बच्चों की सुरक्षा तो आपके बच्चों की सुरक्षा निश्चित हो जाएगी। जैसे एक आपने वो अमेरिका छोड़ के एक स्कूल खोले अपनी तरफ से, कैसे भी तो कुछ ना कुछ बच्चों को मंदिर तो है, प्रसाद तो मिल रहा है ना, लेकिन वो थोड़ा गांव में है उसका, उससे थोड़ा आप फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड से बना के देखो, प्रयास करो, लेकिन देखो अगर आप में से कोई कर सकता है तो ये सबसे अच्छा काम है। और दूसरा दम का अर्थ है स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना। ये भी ग्रस्तों के लिए है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप पढ़ के देख लीजिएगा। इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, और उसके नीचे फिर पढ़ेंगे यज्ञ। यज्ञ गृहस्थ को क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके पास पैसा होता है, वो कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। ब्रह्मचारी कहां से करेगा? वानप्रस्थ कहां से करेगा? सन्यासी कहां से करेगा? उसके पास धन होता है तो उससे यज्ञ करना उसका कार्य है। अग्निहोत्र यज्ञ पहले होते थे, लेकिन अब संकीर्तन यज्ञ। अब संकीर्तन यज्ञ भी मानो आपको कहीं करना है, 1000 आदमी बुलाना है, तो उसके भोजन की व्यवस्था करनी है, तो ये भी गृहस्थ कर सकता है। तो संकीर्तन यज्ञ भी करना है तो गृहस्थ कर सकता है। तो यज्ञ करने का जो भी कार्य है वो गृहस्थ के कार्य में आता है। अब आ गया सातवां, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब स्टडी, पढ़ना, विशेष रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचारी का काम है। शास्त्रों को ठीक तरह से पढ़ना ये ब्रह्मचारी का कार्य होता है। स्वाध्याय किसका काम है? ब्रह्मचारी का। तपस्या, तपस्या विशेष रूप से तो वानप्रस्थ वालों को करनी होती है, क्योंकि वन में जाना है। नाम क्या है? वन में, वानप्रस्थ, वन में जाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी, तो उनको तपस्या वानप्रस्थ के लिए विशेष रूप से लिखा है। तो तपस्या वानप्रस्थ के लिए है। एक शब्द लिखा है इसमें, वानप्रस्थ को शरीर, वाणी और मन की तपस्या करनी चाहिए। शरीर और वाणी और मन की तपस्या ये 18वें अध्याय में आएगी। शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की क्या है, मन की क्या तपस्या है, 18वें अध्याय में ये आएगी। आगे हम जाएंगे तो शरीर की तपस्या अलग है, मन की अलग है, और वाणी की अलग है। फिर प्रचार के, फिर प्रभुपाद को प्रचार का भाव आ गया बात करते हुए। अब तपस्या को तो लोग करने के लिए किसी को कहते नहीं है, लेकिन बहुत प्रकार के आध्यात्मिक अपने खोल के संस्थाएं चालू कर दिए, तो जो खाओ वो खाओ, जो पियो वो पियो, लेकिन हमसे मंत्र ले लो, हमारे शिष्य बन जाओ। तो ये तपस्या, ये चार नियम भी बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में। चार नियम पालन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, कम से कम। और फिर प्रसाद ही खाना ये बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में, साधारण हरेक के लिए है। तो कुछ तपस्या तो सबको करनी है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाना ये तपस्या नहीं है, सुबह 6 बजे उठ के जाता है, नहीं तो सोया हुआ तो 9 बजे तक नहीं उठेगा बच्चा। संडे को कितने बजे उठते हैं? जबरदस्ती तपस्या है कि नहीं है? और आपको उसकी वजह से तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं? उठा के चूल्हा जलाना, कुछ बना के उसको, तपस्या ही है ना। तो सबको तपस्या करनी, लेकिन वानप्रस्थ को ज्यादा तपस्या। प्रभुपाद फिर प्रचार की दृष्टि कहते हैं कि ये लोग सिर्फ कोई तपस्या की बात नहीं कहते, नेम की बात नहीं करते, जो वाय वो करो। जैसे योग वाले हैं, आसन प्राणायाम करो, लेकिन उससे पहले 2 और हैं उसकी नाम ही नहीं लेते, यम नेम का नाम नहीं लेते। आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, यम नेम कौन करेगा भाई? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? यम नेम, नेम का मतलब कुछ पालना, यम का मतलब नहीं करना। वो दोनों चीजों को छोड़ के तीसरी और चौथी के ऊपर सीधे भागते हैं, और फिर 5, 6, 7, 8 को छुट्टी। तो ये लोग अपना संस्थाएं तो चलाते हैं, लोगों से पैसा भी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो विशेष उद्देश्य है वो नहीं सिखा रहे। और फिर अब क्या आ गया बाकी? हाँ, स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है बहुत सरल जीवन, ये ब्राह्मण को बहुत सरल होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण के ये गुण ब्राह्मण का है, लेकिन सब में सरलता होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मचारी जी को, ब्रह्मचारी ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सब का जीवन सरल होना चाहिए, बहुत सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो सरलता एक भले मानस की निशानी है कि आदमी सरल होना चाहिए। सरल का मतलब जो आदमी अपने बातचीत में मुंह से एक कहे और मन में दूसरी रखे वो सरल नहीं कहा जाएगा। तो डुप्लीसिटी से बचा हो तो वो सरल सरलता है। अहिंसा, यहां इसमें अहिंसा को प्रभुपाद ने पशु हत्या को अहिंसा माना है। पशु को अपने खाने के लिए मारना हिंसा है, और जो ऐसे नहीं करता है वो अहिंसा का पालन करता है। लेकिन एक और जगह हमने अहिंसा पढ़ा है, उधर क्या अर्थ था उसका? हाँ, अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं दूसरों को, आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हिंसा है। हिंसा का मतलब है आत्मा का, आत्मा को पतन की तरफ ले जा रहे हैं तो हिंसा हो गई, और अगर शिक्षा दे रहे हैं तो अहिंसा है। लेकिन यहां प्रभुपाद ने इस अहिंसा में, मानो अगर कोई आपको पेपर में आए कि 16वें अध्याय की अहिंसा का क्या अर्थ है, तो इसमें आप देख लीजिए पशु हत्या है विशेष रूप से। वो अहिंसा कहीं और जगह पे थी, ठीक है ना? इसमें पूरा यही है। फिर एक आखिरी लाइन, रियल अहिंसा, सच्ची अहिंसा क्या है? किसी का भी आगे की प्रगति को नहीं रोका जाए। सत्यम, सत्य का मतलब सच बोलना। ये सत्यम एक ही धर्म का स्तंभ कलयुग में बचा है। दया चली गई, तपस्या चली गई, पवित्रता चली गई, केवल सत्य एक बचा है। तो सत्य बोलना ये आखिर में बचा है, कि सत्य को तोड़ मोड़ के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने मनोरथ के लिए, जैसे झूठ नहीं बोल सकते, वो कभी कोई कसाई गाय के पीछे आए और गाय आपने देखी हो गाय को, तो उसको सच बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसे स्थितियां थी अपनी जगह पे, लेकिन तोड़ मोड़ के अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मोड़ के नहीं बोलना चाहिए। ये पहली लाइन है। और प्रभुपाद ने इस सत्य को कहां जाके समझाने का प्रयास किया है, कि शास्त्रों में जो बातें लोगों को समझने में नहीं आती है सत्य, उसको तोड़ मोड़ के अपनी इच्छा से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और गुरु जी के चरणों में जाके उस सत्य को ठीक तरह से समझना चाहिए। जैसे मानो शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजें लिखी है जो हमको नहीं समझ में आती है, हमको नहीं समझ में आती है इसका मतलब अर्थ थोड़ी सत्य नहीं है, हमारे को समझ में नहीं आता। जैसे इस मेडिकल स्टोर के ऊपर बहुत सी दवाएं लिखी हुई है, उसमें कुछ तो जहर भी है, लेकिन सब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है वो झूठ वो रख के बैठा है, तो किसी के लिए काम की वो भी होगी। तो हमको नहीं समझ में आता है शास्त्र, तो हम उसको तोड़ मोड़ के, बहुत से लोगों ने शास्त्रों को थोड़ा सा घुमा फिरा के सिख संप्रदाय में एक जगह पे एक श्लोक लिखा है, मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुंभार, ऐसे कुछ उसमें लिखा है कि मिट्टी मरने के बाद मुसलमान को दफनाया जाएगा और फिर उसका मिट्टी हो जाएगी, तो फिर कोई कुंभार उसके निकाल के वो मटका बना देगा, ऐसे उसका अर्थ था। तो उस वक्त जो गुरु जी होने वाले थे, जिसको गुरु बनना था नेक्स्ट, उसको औरंगजेब ने बुलाया कि ये आपने हमारे खिलाफ देखा है, तो उसने मुसलमान शब्द को बदल दिया, मिट्टी इंसान की ऐसे कर दिया कुछ। तो बड़े गुरु जी ने कहा आपने ये शब्द वहां बदल के क्यों बोला, ये शास्त्र का आपने गलत जो है वो, तो उसको गुरु के पद पे उसको वो पद से हटा दिया कि तुम इसके अधिकारी नहीं रह जाते हो, कि जो शब्द जैसे लिखा है उसको वैसे रखना चाहिए। जैसे बहुत सी जगहों पे एडजस्टमेंट करते हैं लोग के, नहीं ऐसे शास्त्र में लेकिन ऐसे मैं कहूँ कि ना कहूँ ये लोग खुश होंगे नहीं। आपको लोगों को खुश नहीं करना है, भगवान को खुश करना है, भगवान ने जो लिखा है वो बात करनी है। प्रायः हम सामने वाला कैसे खुश होगा, नाराज ना हो जाए ये सोचते हैं। तो विशेष रूप सत्य का मतलब है शास्त्र के सत्य को तोड़ने मोड़ने का प्रयास नहीं करना। वेद को, श्रुति को, शास्त्र को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और प्रभुपद ये एकदम आते हैं, भगवत गीता के ऊपर बहुत से लोगों ने अपने अपने भावार्थ लिखे हैं, लेकिन भगवान के भाव को तो किसी ने नहीं लिखा है। इसको बोलते हैं सत्य को तोड़ मोड़ देना। आखिर में यही कहते हैं अक्रोध, कुछ चीजों का नहीं लिखा है प्रभुपद ने आगे, देखो उसे अक्रोध, इसके बाद अक्रोध तो है, अक्रोध, अक्रोध का अर्थ तो सबको आता है ना, क्रोध नहीं करना, लेकिन क्रोध करना सबको आता है, इसका अर्थ भी आता है और क्रोध करना भी सबको आता है। अक्रोध लिखा है, चेक एंगर, अपने क्रोध को रोकना, क्रोध बंद नहीं होगा आना, इसको रोकने का अभ्यास करना चाहिए। और फिर ऐसी स्थिति हो जहां क्रोध आना संभव है और लोग क्रोध दिलाने के लिए ही ऐसे कह रहे हैं, उसको सहन कर जाना। विशेष रूप से कुछ लोग आपने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी चाल ऐसी है, लोग चढ़ाने के लिए उसको वैसे ही बोलेंगे। हाँ, जाते हुए उसी वक्त उसको वैसे बोलेंगे कि इसको क्रोध आना चाहिए और मजा लेते हैं उसका। तो उस वक्त उसको प्रोवोक जब कोई कर रहा है क्रोध, तब उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। क्रोध बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कहीं कहीं काम आएगा। जैसे बच्चों के ऊपर डांटना है तो क्रोध का नमूना दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे सुधरेंगे नहीं। तो उसको क्रोध का अर्थ क्या है कि गुस्से में दूसरे का अहित न करना। गुस्से में दूसरे का हित कर रहे हो तो क्रोध ठीक है, जैसे बच्चे का हित ही करते हो क्रोध करते हो, तो गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध करता है तो उसके हित के लिए करता है। हनुमान अगर जाके लंका को जलाता है तो राम के हित के लिए जलाता है, तो यह क्रोध ठीक है, क्रोध छोड़ना नहीं है। लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप से क्रोध को रोकने का प्रयास करना चाहिए घर के अंदर। क्रोध के कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। क्रोध से होता क्या है प्रभुपाद जी फिर एकदम कहते हैं, सारा शरीर दूषित हो जाता है। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था, क्रोध जिसको आए उसके सामने उसको आईना दिखा देना, फिर उसको क्रोध करने से डर लगेगा। अपने आप को क्रोध में आईने में देखना, अथवा दो चार पांच क्रोधियों के फोटो टांग दो। हम लोग जहां तमिलनाडु में कहीं मधुराई में ये हमने कहा बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो माँ उसकी क्रोध करने लगी, लड़का अंदर से आईना लाके उसको दिखाने लगा। दूसरे दिन मुझे बोला क्या उसको आपने समझाया प्रभु जी, वो आया और मेरे को हंसी आ गई, अब आईने में क्या देखा। ज्यादा क्रोध होगा तो आईना तोड़ देगी, कम से कम आपका मुंह तो नहीं तोड़ेगी ना। क्रोध से सारा शरीर दूषित होता है। क्रोध आता कहां से, तीसरे अध्याय में जाइए, याद आ जाएगा क्रोध कहां से आता है, रजोगुण उद्भव, रजोगुण में क्रोध होता है, क्रोध रजोगुण से आता है, कामेश क्रोधेश रजोगुण। तो यहां प्रभुपाद ने वो चीज लिखी है कि क्रोध रजोगुण से आता है और इच्छा की अपूर्ति के कारण आता है। लेकिन जो अपने आप को दिव्य स्तर पे रखना चाहता है उसको क्रोध को रोकना चाहिए। थोड़ी रोकना इसलिए लिखा है कि थोड़ी देर रोकोगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रोध आता है ऐसे वेव में आता है, थोड़ी देर के ऐसे आएगा, और आपने 5 मिनट रोक दिया तो फिर तो खत्म हो जाएगा अपने आप, वो रह नहीं सकता ज्यादा। क्रोध हमेशा नहीं रह सकता है, थोड़ा देर रोकने का। और इसलिए कभी कुछ लोग उल्टी गिनती 100 तक कर लेना, इसका मतलब इतना टाइम अगर आप उसमें लगा दोगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर। अब उल्टी गिनती करने की जरूरत नहीं है, राम राम जप लो जबरदस्ती चाहे क्रोध में, हरे कृष्णा, लेकिन फिर भी उतना टाइम बीच में से गैप डाल दो, टाइम का गैप बीच में डाल दो। देखो आदमी से कभी खून हो जाता है, मर्डर हो जाता है, बाद में बहुत पछताता है। इसका मतलब वो 1 मिनट अगर रोक दिया होता तो ये टल जाता ना मुसीबत। तो उस वक्त कैसे रोकना है ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। आज कम से कम क्रोध आए तो 2 मिनट रोकने का प्रयास करना, तो 1 दिन तो हो जाएगा अभ्यास। अरे हाँ रुक गया, झगड़ा टल गया, फिर एक बार और करके देखते, फिर मतलब हफ्ते में इस दिन क्रोध नहीं, संडे को क्रोध नहीं करें, क्योंकि वही क्रोध का दिन है। बच्चे भी घर में होते हैं, पति भी घर में, पत्नी, वो दिन क्रोध का है, बाहर जाना है, ये करना है, संडे संडे क्रोध बंद। सुबह चारों ओर लिखना चाहिए ना, दिवाली में सजाते दिए उस दिन सब जगह बोर्ड लगा, नो एंगर टुडे, एंगर बर्न्स आपको, क्रोध आपको जलाता है, दूसरे से क्रोध आप करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही मुफ्त में क्रोध में जलते रहते हो, और बहुत बड़ा हानिकार है क्रोध, तो क्रोध से बचना चाहिए। फिर शब्द 2-3 शब्दों को प्रभुपाद ने लिखा नहीं है यहां भावार्थ में, त्याग नहीं लिखा है, शांति नहीं लिखा है, अपयुष्णम सीधा लिखा है, लेकिन त्याग का अर्थ तो सबको आता है ना। त्याग किसका त्याग करना चाहिए, त्याग कर असत संग त्याग, हाँ त्याग का अर्थ लिखा है रेनाउंसिएशन, सीधा सा त्याग करना चाहिए। किस चीज है जो 4 नए में ये त्याग करना है, बुरी संगत का त्याग करना है, बुरे विचारों का त्याग करना है, तो ये भी अभ्यास का, जैसे क्रोध को भी छोड़ना है ये भी त्याग है, 1 दिन क्रोध का त्याग करेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं ना ऐसे, भाई ये सप्ताह में ये चीज नहीं करेंगे, तो ये त्याग हो गया उस चीज का। कुछ लोग बहुत होते हैं, भाई वैसे तो हम वेजिटेरियन नहीं है लेकिन मंडे के दिन अंडा नहीं खाएंगे, मंडे के दिन अंडा नहीं खाएंगे, वैसे आज मंडे है, तो ये त्याग हो गया। 1 दिन का त्याग कैसे भी करते हैं बेचारे, तो इसको त्याग बोलते हैं। और त्याग के बाद शांति, शांति पीसफुलनेस, शांति का अर्थ है शांत, पीस, ट्रैंक्विलिटी, बहुत शांत, शांत अशांत से कुतः सुखम, शांत नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन शांति आएगी कहां से, लोग शांत है ना इसलिए कुछ लिखा नहीं है प्रॉपर। और फिर अपयुष्णम, इसके ऊपर 2 शब्द लिखे हैं, क्या है, दूसरे के दोष नहीं देखना। हम क्या काम करते हैं प्राय, केवल दूसरे के दोष देखते हैं। और जो व्यक्ति देवी संपदा वाला होता है दूसरे के दोष नहीं देखता है, दूसरे में गुण देखता है। हर एक व्यक्ति में दोष भी है और गुण भी है। दोष देखने वाला मक्खी की तरह है जो गंध को देखता है, और गुण देखने वाला मधुमक्खी की तरह है जो कड़वे नीम में भी मधु को देख लेता है। तो दूसरे में दोष न देखना। बड़ा मालती माता जी बता रही थी कि हम, ये 67-8 की बात है, नया नया सैन फ्रांसिस्को का मंदिर चालू हो रहा था, उसका पति श्याम सुंदर और ये दोनों पापा ने इनकी शादी कराती, दोनों उधर थे। तो एक दिन पापा तो कहा हमको अब जाना पड़ रहा है। बोला कहाँ जाएंगे, बोले जेल में जाना है। आओ, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, कोई बात नहीं। उनको थोड़ा रिलीव करने के लिए, दोष नहीं देखा उनका, क्यों जा रहे थे जेल में, बोला पहले हम एपी थे, कोई ड्रग्स का धंधा किया था उसके लिए हमारे ऊपर केस है। तो आई वॉज ऑल्सो हैविंग ए ड्रग बिजनेस, तो फार्मेसी थी उनकी। लेकिन प्रभुपाद ने एकदम उसको फिर थोड़ा उसको दोष को न देखकर उसको बहुत कह दिया, नहीं नहीं मेरा भी ड्रग का बिजनेस था, तो उनका तो फार्मेसी था, अब उनको कम से कम जो है वो दोष तो नहीं, नहीं तो निकलो तुम ड्रग बेचते थे, जेल में जा रहे हो। बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई उनको 5 साल सजा होनी थी, प्रभुपाद जी 15 दिन के बाद वापस आए और 15 दिन के बाद वो जेल से निकल आए। प्रभुपाद बोला मैं विचार कर रहा था 5 साल बहुत ज्यादा है, आप तो कैसे, वो कह रही थी ऐसे लगता है प्रभुपाद का किसी से सके साथ संबंध ऊपर है कि हमारा न निकलने वाला काम भी जबरदस्ती से अपने हमको हमारे को निकाल दिया जेल से। बड़ा आश्चर्य, मैं बताऊं कि किसी में दोष नहीं देखना प्रभुपाद के एक लक्षण माता जी बता रही थी, बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा। एक लड़की भक्त बनने के लिए आई लेकिन गर्भवती थी, पति नहीं था। प्रभुपाद ने देखा, आप लड़कों में से कोई इससे एक शादी करो, इसको कौन देखभाल करेगा इसकी बच्चे की, हु विल प्रोटेक्ट हर। और एक लड़के ने उससे शादी कर ली और अभी भी बड़े मतलब कहता मैं उसको जानता हूं, अभी तो उसके पोते हैं लेकिन वो घर ऐसे बसा और भक्त बन गया, ऐसा कोई करेगा क्या? इट्स लाइक ए फादर। ये अपोजिशन ये है कि दोष नहीं देखना, वो दोष तो वो समाज ही दोषी है, लड़के लड़का ऐसे घूमते रहते हैं, ये होना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने उसको कैसे बदल दिया उसका जीवन। लड़का था 18-20 साल का भक्त बना, उसने बोला मेरी बहन है वो अभी 16 साल की है और मेरी माँ तो उसको जन्म दे के अस्पताल से छोड़ के आ गई थी और बहुत दुखी है, क्या करना चाहिए प्रभुपाद, उसको आप कहाँ रखेंगे? 16 साल की है मालती श्याम सुंदर, उनकी उम्र कितनी है? 22 साल और 22 साल, एक 22 का एक 24 का है और ये लड़की 16 साल की है। बोला आप इसको अपनी बेटी अडॉप्ट कर लो। वो गए कोर्ट में जाके उन उस बेटी को जाके कानूनी, वहां बोले 22 साल की माँ और 16 साल की बेटी, ये कैसे होगा? लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्ची को गोद लिया कि बच्ची की सुरक्षा माता पिता के अंतर्गत होनी चाहिए। और फिर उस बच्ची को प्रभुपाद ने कहा आप जाके स्कूल में पढ़ो। अब वो इतनी कोई पेरेंट नहीं देखने वाले थे तो कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं थी, फिर उस स्कूल में जाके वो पढ़ी बच्ची। तो ये अलोलुप्त ये शब्द का अर्थ देख लीजिए, किसी में दोष नहीं देखना। कैसे भक्त आते हैं बेचारे पुराने जन्म में, क्या क्या पुराने जन्म नहीं पुरानी लाइफ में क्या किया होगा उसको न देखो, उसकी अच्छाई ये देखोगे जैसी जगह पे तो आया है ना, अब यहां से इसको आगे बढ़ाने में कोई। बड़ा आश्चर्य कि ये 2-3 चीजें हैं अब सुनने में मिली, बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद कितने किस हद तक दोष किसी में न देखने का, उनमें किसी में दोष नहीं देखा, एपी थे सब थे इनमें किसी में दोष नहीं देखा। समय हो गया आपका लंच माता जी बना के रख के आइए क्या? हाँ फिर ठीक है। और फिर क्या है, प्रभुपाद का इसका अर्थ ये नहीं है कि चोर को चोर नहीं कहना चाहिए, चोर को चोर कहना चाहिए, लेकिन अच्छे आदमी को बुरा कह के अपराध नहीं करना चाहिए। हम प्रायः क्या भक्तों के अंदर कितना दोष देखते हैं, प्रभुपाद उसमें कहते भक्तों के अंदर दोष देखने की जरूरत नहीं है, चोर को चोर कहना ठीक है। और फिर हेरी शब्द है, हाँ हेरी इसका अर्थ है लज्जा, ये स्त्री का गहना है विशेष रूप से। निर्लज्जा का काम नहीं करना चाहिए जीवन में। अचापलम अचापलम का मतलब स्थिरता ऐसी होनी चाहिए, कोई हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो भी डगमगाना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं एक चीज बता रहे थे नेवर गिव अप, कभी भी हथियार नहीं छोड़ना, नहीं हम कर पाए करेंगे, एक बार फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरा हो गया कोई बात नहीं। वो किसने पहले थर्मामीटर बना था उसने या किसी ने बल्ब बने, किसने बोले कितने बोला इतने बार बोला टाइम्स के बाद ये हो गया, इतना फेल्यूर होने के बाद ये एक्सपीरियंस मेरा हो गया तब ये बना है। गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट एंड बैड जजमेंट कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स, गलत काम। हाँ गलत काम करेंगे, गलत जजमेंट लीजिए, गलत निर्णय करेंगे तो क्या होगा, गलत निर्णय कर लिया गलती हो गई, उससे हमारे को अनुभव हो गया और अनुभव से दोबारा गलती नहीं करेंगे तो हम वो अनुभव हमारे लिए, तो एक गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती दोहराना खराब है, उसको रिपीट करना खराब है। तो कभी भी हमारा काम अगर सिद्ध नहीं भी हो तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा आपलम होपलेस, हाँ एंडलेस होप, होपलेस एंड। तेज क्षत्रि के लिए है, क्षत्रि को तेजवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, रक्षा करनी है कमजोर की, वो अपने आप को कहे कि मैं अहंसक हूं ये उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए हंसा जरूरी है, शत्रु का हंसा करने की जरूरत, देश की रक्षा करने के लिए कमजोरों को। शौचम पवित्रता, ये तो शरीर की और मन की, इसको करना चाहिए, ये सबके लिए है और विशेष रूप से ये शौचम किसके लिए प्रभुपाद लिखा है, आप लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए लिखा है, शौचम इस पर मर्केंटाइल पीपल जो काले धंधे में काम करते हैं, देखो लिखा है, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए ना सोचम को देखिए, एक पैरा लास्ट बट वन पैरा है, हाँ लिखा है ना, ये उनके लिए है। और फिर क्या हो गया आखिर में, क्या आ गया, ना अति मानिता, इसका अर्थ है ज्यादा मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये शूद्र के लिए है, शूद्र को जबरदस्ती कहे भाई मेरी सम्मान करो ऐसी उसको इच्छा नहीं करनी चाहिए उस वर्ण के लिए, ये उसमें विशेष है। ना अति मानिता, ये 26 गुण है और इसका भावार्थ ये है थोड़ा इन गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मुश्किलाते हैं लेकिन ये 26 गुण देवी संपदा के हैं, इसके ऊपर और भी ध्यान किया जैसे, मेरे ख्याल में समय हो रहा है, कोई नहीं इसके बाद असुरों के गुण हैं ये कल पूरे कर लेंगे, तो यहां इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि ये मुख्य था देवी गुण। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में, ये 1:13 हुए भाई, टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, घड़ी का टाइम ज्यादा हुआ है, लेट शुरू किया है।